जा श्री श्री राधा गोकुलानंद की जा, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जा, श्री श्री गौर निताई की जा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जा, गौर प्रेमानंद, ऑल ग्लोरीज टू द सेमुल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द सेमुल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द सेमुल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 7 के 33वें श्लोक से मैं कथा प्रारंभ करूंगा। उसके पहले कुछ कथाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन दुर्योधन धराशायी किया गया। अंतिम युद्ध था भीमसेन का युद्ध दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का वध कर चुके थे भीमसेन। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध भीम ने किया था। तो अंत में दुर्योधन के साथ उनका युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध। गदा युद्ध में यह नियम है कटी से कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है धर्म युद्ध के अनुसार। लेकिन भगवान का संकेत पाकर भीमसेन ने दुर्योधन के जांघ पर गदा मारा और जांघ पर इतना जोर से गदा मारा कि दुर्योधन ऊपर उठ गया और इसके बाद धड़ाम से गिरा, उसकी जांघ टूट गई। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार गिर गया तब उसके सेना में जो लोग बचे हुए थे, बहुत कम लोग बचे थे, उनमें बहुत हाहाकार छा गया। तो उसमें 3 व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गए। लास्ट में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 युद्ध छोड़कर भाग गए। पास में जंगल था, उसमें छिप गए। जब शाम का समय हुआ, थोड़ी थोड़ी रात्रि हुई, तो वे लोग दुर्योधन को देखने के लिए आए। बहुत करुण दृश्य था। एक चक्रवर्ती राजा और आज भूमि में गिरा हुआ था, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। तो इस तरह का दिन देखना पड़ता है जीवन में। वही दुर्योधन जिसके पास सहस्रों सेवक रहते थे, आज कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो तीनों आए, ये तीनों दुर्योधन के द्वारा पोसे गए थे और दुर्योधन की तरफ से लड़े थे तीनों, उसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। तीनों जब मिलने के लिए आए तो दुर्योधन की इस दुर्दशा को देखकर भी बहुत विलाप करने लगे। ओहो, आज आपकी ये दशा हुई। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वे लोग सोचने लगे। तो अंत में वे, फिर कोई आवाज आई इसलिए भाग गए, जंगल में फिर चले गए। तो वहीं बैठे थे, किस तरह से दुर्योधन के इस दुर्दशा का बदला चुकाया जाए पांडवों से। पांडवों के सेना में एक औक्षहोणी सेना बच गई थी। धृष्टद्युम्न ने जो सेनापति थे वे अंतिम समय तक जीवित रहे, द्रौपदी के भाई थे वे। कौरवों की तरफ से कई सेनापति चेंज किए गए थे और मर चुके थे, लेकिन पांडवों के एक ही सेनापति रह गए लास्ट तक, धृष्टद्युम्न। तो एक औक्षहोणी सेना बची हुई थी। तो उस दिन पांडव सब निश्चिंत तो सो गए, क्योंकि अब तो युद्ध समाप्त हो चुका था, कोई चिंता नहीं थी और थके थे 18 दिन युद्ध करके, ले सब सो गए। तो उधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। तब तक उसी समय एक घटना घटी। रात्रि में एक उल्लू आक्रमण किया कौओं के घोंसलों पर। उल्लू समझते हैं ना, उल्लू के कहते हैं संस्कृत में, उसको आउल कहते हैं ना इंग्लिश में। वो आक्रमण किया रात्रि में, रात्रि में उल्लू को दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आक्रमण किया और कई कौओं को रात में मार कर गिरा दिया, एक उल्लू। तो इन तीनों को यह प्रेरणा मिली कि यदि सोई अवस्था में हम लोग पांडवों की सेना पर आक्रमण करेंगे तो सोए हुए हजारों लोगों को हम लोग तीन आदमी मार सकते हैं। उनके मन में ऐसा अमर्ष था, इसलिए कि भीमसेन ने क्यों गदा युद्ध किया, जांघ पर क्यों मारा, इसलिए हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो ये तीनों सोई हुई सेना पर आक्रमण किया और अश्वत्थामा भीतर शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को काट दिया। निश्चिंत सोए थे बेचारे लड़के, तो उनको कत्ल कर दिए, काट दिया। और धृष्टद्युम्न को भी मारा, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने इसके पिता द्रोणाचार्य का वध किए थे। और कई लोगों को मारे। पांडव उस दिन बाहर सोए थे भगवान कृष्ण के साथ, तो उनका कुछ नहीं हुआ। भीतर जितने लोग सोए थे सबका वध हो गया। तो यह समाचार सवेरे जब मिला द्रौपदी जी को कि उनके 5ों पुत्र मार दिए गए, तो बेचारी लगी विलाप करने। बहुत बहुत दुख पार करके वह इस दशा में पहुंची थी, लेकिन अंत में अपने 5ों पुत्र मारे गए। 5ों पांडवों से एक एक पुत्र द्रौपदी जी को हुए थे। वो बहुत विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। यद्यपि विजय मिला, जीत हुई, लेकिन इतना बड़ा घाटा सह कर। तो अर्जुन उस समय सांत्वना देने लगे अपनी प्रिया को, द्रौपदी को, कि तुम्हें रोवो मत, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका मस्तक मैं लाऊंगा, गांडीव धनुष के बाणों से उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद। इस तरह से यद्यपि द्रौपदी विलाप कर रही थी, उसने सुना नहीं अर्जुन की बात को, लेकिन अर्जुन इस तरह से सांत्वना दे रहे थे। आदमी क्या करेगा विपत्ति में, मान लीजिए पत्नी विलाप कर रही है तो पति का कर्तव्य है उसको सांत्वना देना। तो उस समय अर्जुन यही कह रहे थे कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगे। द्रौपदी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन अर्जुन इस तरह कह करके भगवान कृष्ण से कहे कि आप रथ तैयार कीजिए और हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। तो भगवान तो आज्ञा पालक हैं अर्जुन के, वे तुरंत रथ तैयार किए और चल दिए अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा पहले से सतर्क था, जब कोई व्यक्ति बहुत गलती करता है तो उसके मन में शंका हो जाती है कि एक्शन जरूर होगा, तो चिंता में था। तब तक देखा कि अर्जुन धनुष बाण लिए और कवच बांधे रथ पर चढ़ कर के आ रहे हैं, तो वह भी एक अपने रथ पर चढ़कर प्राण बचाने के लिए भागा। अब उसे कीर्ति की कोई इच्छा नहीं थी, प्राण बचाने के लिए भागा, लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े थक गए, अब चल नहीं रहे थे, तब वह पैदल भागा। तो पैदल भागा तो अर्जुन भी रथ से उतर कर पैदल हो गए, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसके साथ रथ से पीछा करना ये धर्म नहीं है, ये भी पैदल पकड़ने के लिए दौड़े और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। यहाँ से कथा हम श्लोक से कह रहे हैं। तत आसाद तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्ष ताम राक्ष पशुम रसनया जथा। अर्जुन ने दौड़ करके और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। उस समय अर्जुन की आंखें रोष ताम्राक्ष क्रोध से तांबे के समान हो गई थी, लाल आंखें हो गई थी। जब व्यक्ति में क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। ताम्र, ताम्र कपर को कहते हैं ना, तांबे जैसे जैसी लाल आंखें हो गई। और वे अश्वत्थामा को अपने गुरुपुत्र को इस तरह बांध लिए जैसे कोई पशु को बांध लेता है, हाथ पीछे करके मुसुक चढ़ा करके और उसे अरेस्ट कर ले, बांध लिए। पहले उन्होंने कहा था कि उसका मस्तक लाऊंगा, लेकिन जब पकड़े तब केवल बांधे, पशु की तरह बांधे और ले चले शिविर के तरफ। उसको रथ पर बैठाए, रथ पर बैठा करके और युद्ध शिविर जहाँ था, जहाँ महारानी द्रौपदी विलाप कर रही थी, वहाँ पर ले चले अर्जुन। तो जब ही उसको रथ पर बैठा कर ले चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहने लगे। एक अद्भुत बात है, शिविराय निनिसंतम दामना बद्धवा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अम्बुजे क्षण। भगवान ने श्री कृष्ण के लिए, सूत जी कह रहे हैं कि प्रकुपित, भगवान बहुत कुपित थे। तो जो बहुत कुपित थे तो इनकी आंखें तो तांबे के समान हुई नहीं, तो अम्बुजे क्षण, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर थी। इसका मतलब केवल बनावटी क्रोध था, भगवान में कोई क्रोध नहीं था। तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कि अर्जुन क्रोध में थे, सचमुच क्रोध में थे, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या की गई थी। लेकिन जब शिविर के तरफ ले चले तो भगवान कुपित हो गए उस पर, अश्वत्थामा पर, और अर्जुन से कहने लगे, मैनम पार्था हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंध मिमाम जहि योसा वनागस सुप्ता न बधिर निशि बालकान। अर्जुन, इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो, इसका अभी वध क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया है ना कि इसका मस्तक लाओगे, तो इसका मस्तक काटो, इस दुष्ट को छोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि यह ब्राह्मण है परंतु यह आतताई है, पापी है, इसको मारो, इसको बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध कर रहे हैं कि नहीं। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन परम धर्मनिष्ठ हैं, और अर्जुन की कीर्ति को संसार में फैलाने के लिए भगवान इस तरह का वचन बोल रहे थे। पार्थ, एनम त्रातुम्मा अरहसि, इसको तुम बचाने के योग्य नहीं हो, इसको मारो। क्यों? क्योंकि इसने निरपराध लोगों की हत्या की है और वह भी सोए हुए की और वह भी बच्चों की, इस प्रकार से हत्या किया। अपना शत्रु भी सोया हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो सोए हुए की हत्या की है और वो भी निरपराध की हत्या की है। द्रौपदी के बच्चों ने इसका कोई अपराध नहीं किया लेकिन उनका वध किया। तो बच्चों की हत्या किया, सोई अवस्था में हत्या किया और निरपराध की हत्या की है। मान लीजिए हमारा कोई अपकार किया है, कुछ बिगाड़ा है, तो उसका कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्सनल लोग कुछ बिगाड़े नहीं थे और बच्चे थे वे और सोए थे, तो उस अवस्था में उन बच्चों की हत्या किया है, इसलिए यह महापापी है, इसका वध करो। फिर भगवान नीति बताते हैं कि किस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुमहंति धर्मविद। कोई भी धर्म युद्ध के नियम को जानने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का भी वध नहीं करता है यदि वह शत्रु मत्तम, मत्तम का अर्थ है कि मदिरा आदि पी करके बेचारा बेहोश हो गया है, तो उस समय उसका वध नहीं किया जाता। अपना शत्रु ही है तो क्या, लेकिन कुछ पी करके खा करके अगर होश में नहीं है तो उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम और प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ है असावधान है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी, उस दशा में उसका वध नहीं होना चाहिए। और उन्मत्तम, कहीं पागल हो गया है, ग्रह बात आदि लग गया है, उस समय भी उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, सोया हुआ है, बालम और भले शत्रु का लड़का शत्रु है लेकिन यदि बच्चा है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, बालम, स्त्रियम, और भले वो शत्रु है लेकिन अगर स्त्री है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। जडम, जडम का अर्थ है बिल्कुल पागल जैसा हो गया, अनवधान, शरीर का उसको ध्यान नहीं है, मूर्ख है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। या भीतम, यदि वो डर गया हो, हाथ जोड़ रहा हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम, शरण में आ गया हो, और वीरथम, उसका रथ टूट गया हो, हथियार नहीं हो उसके पास, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्मवेत्ता व्यक्ति इस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करता।